आज के प्रोग्राम में मैं लिसनर्स के स्वागत करती हूँ। जैसे कि दो तीन सेशन से हम एनर्जी के ऊपर ही बात कर रहे हैं। पहले तो हमने वर्क पावर एनर्जी, फिर थर्मल एनर्जी, फिर लाइट एनर्जी, और आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर। जैसे ही हम टॉपिक का नाम सुनते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो हमें तो सबको पता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है। जैसे भी मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के मतलब, जैसे ये टर्म सुनते हैं आपको क्या याद आता है, तो आप कहेंगे कि हाँ बल्ब, ट्यूबलाइट, या फिर जो हम चार्ज करें टेलीविज़न, ये वो, जितने भी मशीन्स आप आपके घर में देखते हैं या चारों तरफ देखते हैं, सारे इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी तो सबको समझ आता है, पर ये इलेक्ट्रिसिटी आया कहाँ से? पहले जब इंसान के पास ये सब नहीं था, तो उसने ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं ऐसा कैसे सोचा उसने? तो ये कुछ भी हम साइंस में देखते हैं, जो भी आज डेवलप हुआ है, जो भी आविष्कार या उद्भावन हुआ है, वो सारे ही नेचर के किसी इंसिडेंट से ही इंसान के दिमाग में आया, या फिर नीड से ही आया है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रिलेटेड हमारे नेचर में क्या ऐसा इंसिडेंट होता है, या क्या नेचुरल फेनोमेनन है जिससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सोच सकते हैं? पहली बात तो जो बारिश के दिनों में थंडरस्टॉर्म होता है, लाइटनिंग होती है, वहाँ से आती है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सोच। वो एक वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल स्पार्क है, वहाँ भी इलेक्ट्रिक एनर्जी ही जनरेट होता है। और जैसे हम विंटर के दिनों में कपड़े उतार लेते हैं, सिंथेटिक कपड़े, तो एक चर्च जैसा आवाज़ होता है, और अब अंधेरे घर में हो तो आपको नज़र आएगा वहाँ पे कुछ जलता हुआ, स्पार्किंग सा नज़र भी आएगा, तो वो भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी ही है। इन सबको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, वो एक जगह पे रह जाता है, मूव नहीं करता, वहीं पे ही रहता है, स्टैटिक है, रेस्ट पे है, तो इसको हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। पर जो इलेक्ट्रिसिटी के नाम सुनते ही आपको समझ आता है, ये ट्यूबलाइट हुआ, या आपके घर में जो भी मशीन्स हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलते हैं, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल रहा है वो मूव करते हैं, सबस्टेशन या पावर स्टेशन से आपके घर तक आ रहा है, मतलब वो मूव कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन जो स्टैटिक है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। तो अब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि क्या होता है ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या है और ये कैसे वर्क करता है। जैसे आपके घर में भी कभी खिलौने आप आजकल लाते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल खिलौने आजकल आते हैं, बैटरी से चलते हैं, तो वो भी कैसे काम करते हैं, कभी बैटरी खुल गया, वो भी कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं उसको बस एग्ज़ाम देना है और फिर भूल जाना है, इस तरीके से स्पेशली। तो साइंस में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ें और भूल जाएं, वो आपके काम में नहीं आएगा, आगे चल के आपने साइंस ब्रांच छोड़ के किसी और भी ब्रांच में चले जाएं। लेकिन अगर ये बेसिक्स आपको पता है, क्योंकि ये आपकी डेली लाइफ में यूज होते हैं, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो, तो इसलिए अगर ये बेसिक्स आप समझ जाते हैं, तो आप अपने घर के छोटे मोटे जो भी डिफ़िकल्टी परेशानियां आ जाती हैं, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो घर में कोई काम नहीं होता, तो उसके जो प्रॉब्लम आ जाते हैं आपके गैजेट्स में या कुछ ऐसे अप्लायंसेस में, तो आप ठीक भी कर सकते हैं अगर आपको बेसिक्स पता है, या आप किसी दूसरे मैकेनिक के पास भी लेकर जा रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपको वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, थोड़ा तो बेसिक्स पता होना चाहिए। तो कैसे ये काम करते हैं इसके बारे में, इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करता है, उसका क्या नेचर है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर। जैसे ही मैंने बताया था, चार्जेस एट रेस्ट, देन व्हाट आर द नेचर ऑफ चार्जेस, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बाद हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर जो मूव कर रहा है उसके ऊपर आएंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट आर कंडक्टर एंड व्हाट आर इंसुलेटर्स, व्हाट आर रेजिस्टर्स, उसके बाद हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में बात करेंगे, जो नॉर्मली हमारे अप्लायंसेस में यूज होता है, और उसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन से आपके आते हैं, तो वो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स हम पढ़ेंगे। अगेन हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट और थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला जो टॉपिक है आज की डिस्कशन का वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज और स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्जेस एट रेस्ट। तो चार्ज कब रेस्ट में रहता है? तो पहले हम एक डेली ऑब्जर्वेशन से ही शुरू करेंगे। जैसे आप स्कूल्स में भी ये सब खेलते होंगे बचपन में कि एक प्लास्टिक स्केल जो आता है आपका, उसको ले लिया, ड्राई हेयर पे आपने रब कर दिया, फिर छोटे छोटे टुकड़ों के पास, कागज़ के टुकड़ों के पास अगर ले आते हैं तो वो उसके साथ चिपक जाते हैं। तो ये भी एक एग्ज़ाम्पल है इलेक्ट्रोस्टैटिक के। जब आप रब करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो रबिंग से क्या होता है, वहाँ उसमें दोनों में जो दो चीज़ के अंदर बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, उन दोनों चीज़ों में चार्ज डेवलप हो जाता है। और क्योंकि चार्ज डेवलप हो जाता है, फिर उसमें चार्ज का एक ये क्वालिटी है कि वो अट्रैक्ट करता है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो आपने देखा कि वो अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज़ ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हो गया है। मेटल को भी आप ऐसे कर सकते हैं। हमने जो पहला एग्जांपल देखा वो प्लास्टिक के देखा, कम को भी आप कर सकते हैं, कंघी को ड्राई हेयर में करने के बाद। अपने जब ड्राई सीजन्स होते हैं, ड्राई वेदर, हम जब कंघी करते हैं ड्राई हेयर को, देखते हैं कि वो बाल ऐसे ऐसे उसके साथ निकलने लगते हैं, उड़ने लगते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो वो भी उसी वजह से है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी दोनों में चार्ज, तो इसलिए वो उसके पास अट्रैक्ट होकर आने लगता है। तो वो भी एक एग्ज़ाम्पल है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो इन सब केसेस में हमने नॉर्मली आप जहाँ भी देखते हैं वो इंसुलेटर्स के केस है, प्लास्टिक कम है, प्लास्टिक स्केल है। मेटल्स में भी हो सकता है, प्रोवाइडेड जहाँ आपने उस मेटल रॉड को पकड़ा है वो हैंडल होना चाहिए जो इंसुलेटर। अदरवाइज़ अगर मेटल को आपने डायरेक्ट अपने हाथ से पकड़ा है तो वो फिर चार्ज आपके अंदर फ्लो हो जाएगा, इस वजह से आपको वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और उसके जो क्वालिटीज़ है, अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी है, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मेटल एक कंडक्टर है, वो कंडक्ट कर लेता है। तो ये था हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक के एग्ज़ाम्पल्स। आप ये जो चार्ज डेवलप हो रहा है, उसके नेचर ऑफ चार्ज क्या है, ये अट्रैक्ट कब करता है, रिपेल कब करता है, इसको आप एक्टिविटी के थ्रू भी कर सकते हैं। एक स्ट्रॉ ले लीजिए, उसको एक थ्रेड बांध के लटका दीजिए कहीं से, फ्रीली सस्पेंड कर दीजिए। उसके बाद एक दूसरा स्ट्रॉ लाइए, उसके पास लेकर देखिए, दोनों में कोई एक्शन नहीं है, ना रिपेल करेगा ना अट्रैक्ट करेगा। अगर उस स्ट्रॉ को आपने पेपर में रब कर दिया और फिर वो सस्पेंडेड स्ट्रॉ के पास अपना फ्री एक और स्ट्रॉ पकड़ के लाएंगे, तो देखेंगे कि वो अट्रैक्ट हो रहा है आपके स्ट्रॉ की तरफ, वो सस्पेंडेड स्ट्रॉ खींचा चला आ रहा है। दैट इज़ बिकॉज स्टैटिक चार्ज हैज़ बीन डेवलप्ड इन द स्ट्रॉ। अब दूसरे स्ट्रॉ को भी आप पेपर में रब कर दीजिए, फिर उसके पास लेकर जाइए, सस्पेंडेड स्ट्रॉ के पास दूसरे स्ट्रॉ को लेकर जाइए, आप देखेंगे कि अब रिपेल हो रहा है वो सस्पेंडेड स्ट्रॉ जो है, जिसको आपने तार पे या थ्रेड पे लटकाया है, वो दूर भाग जाएगा। दैट इज़ बिकॉज इन बोथ द स्ट्रॉ सिमिलर चार्ज इज डेवलप्ड, क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज डेवलप हुआ है तो वो रिपेल हो रहा है। अब एक ग्लास रॉड या ग्लास की बॉटल ले लीजिए, कांच की बॉटल, और उसको सिल्क कपड़े में रब करके अगर उस सस्पेंडेड स्ट्रॉ के पास लेकर आएंगे तो आप देखेंगे कि दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है। दिस इज बिकॉज द चार्ज डेवलप्ड ऑन द ग्लास रॉड एंड द चार्ज डेवलप्ड ऑन द स्ट्रॉ आर डिफरेंट, इसीलिए उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। तो इन पूरे एक्टिविटीज में से आपको क्या समझ आता है कि चार्ज दो तरीके के होते हैं, और अगर सिमिलर चार्ज हैं तो उनमें रिपल्शन होगा, अगर डिससिमिलर चार्ज हैं तो अट्रैक्शन होगा। तो ऐसे ही हमने इन एक्टिविटी से तो ये पता कर लिया कि चार्जेस दो तरीके के होते हैं, सेम चार्ज में रिपल्सन होगा, ऑपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होगा। तो हम अब समझ नेचर ऑफ चार्जेस के बारे में बात करते हैं। नेचर ऑफ चार्ज, जैसे अभी हमने बात किया कि दो तरीके के चार्ज होते हैं, तो इसमें एक हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने उनका नाम है चार्ल्स डुफे। तो उन्होंने पहले ये एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि जो ग्लास रॉड को आप सिल्क के साथ रब कर रहे हैं, तो ग्लास रॉड में जो चार्ज डेवलप हो रहा है, और एक इबोनाइट रॉड ले लीजिए और उसको वूलन क्लॉथ के ऊपर रब करिए, तो जो इबोनाइट रॉड के ऊपर चार्ज डेवलप हो रहा है दोनों डिफरेंट है, और ग्लास रॉड में जो चार्ज डेवलप हो रहा है उसको उन्होंने नाम दिया था विट्रियस, और जो इबोनाइट रॉड पे चार्ज डेवलप हो रहा है उसको उन्होंने नाम दिया था रेजिनस। बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन और एक साइंटिस्ट, उन्होंने उस नाम को चेंज करा और विट्रियस को उन्होंने नाम दिया पॉजिटिव और रेजिनस को नाम दिया नेगेटिव। तो आजकल जो आप कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, तो चार्ज दो तरीके के ही होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ग्लास रॉड को सिल्क के साथ करते हैं तो ग्लास रॉड में जो डेवलप होता है वो पॉजिटिव चार्ज है, इबोनाइट रॉड को ऊल के साथ हम रब कर रहे हैं तो इबोनाइट रॉड पे जो डेवलप हो रहा है वो नेगेटिव चार्ज है। तो एक्चुअली रबिंग में होता क्या है, रबिंग में ये होता है जब अब रब करने से पहले उन दोनों, सपोज टेक द एग्जांपल ऑफ ग्लास रॉड एंड सिल्क, तो ये दोनों न्यूट्रल थे। जैसे आप जानते हैं ऑल मैटर इन द वर्ल्ड आर मेड अप ऑफ एटम्स, तो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो फ्रॉम आउटसाइड एंड सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बाहर से तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहता है, मतलब ना उस पर पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। पर जब हम रब कर लेते हैं उसके बाद क्या होता है, जब हम रब करते हैं तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उस सब्सटेंस के आउटर लेयर में जो एटम्स होते हैं, और उस एटम्स के जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर सेल्स के, वो रब करने में एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में चले जाते हैं, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में। तो जिस सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, दैट मीन्स एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और जिसमें इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, इलेक्ट्रॉन जिसमें ज़्यादा हो गए हैं वो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो ऐसे ही हम जब दो चीज़ों को रब करते हैं तो एक पॉजिटिवली चार्ज होगा और दूसरा नेगेटिवली चार्ज होगा, तो इस वजह से हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। लेकिन क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है कि जब हम एक सिस्टम ले रहे हैं द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ ए सिस्टम रिमेंस कॉन्स्टेंट, एक सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो पहले सिल्क और ग्लास रॉड लिया था तो उसमें टोटल चार्ज दोनों का मिला के टोटल चार्ज जितना था, अभी रब करने के बाद ग्लास रॉड पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज हो गया, बट अगेन द टोटल चार्ज विल बी कांस्टेंट, दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन ग्लास रॉड will be equal to the amount of negative charge on the silk cloth। तो ऐसे ही हमारा रबिंग में दोनों में opposite charge, equal and opposite charge develop हो जाता है। तो ये था हमारा nature of charges के बारे में। अब उन charges में हमने तो देख लिया two types of charges develop हो रहे हैं, तो ये जो charge develop होते हैं इनमें अट्रैक्शन होता है, अगर सिमिलर चार्ज है तो रिपल्सन होगा, ऑपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन, इसका ये कैसे होता है, कितना होता है और क्यों होता है, तो अगर हमने एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज ले लिया तो उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा। अगर दोनों ही सेम लिया है, इधर पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, तो दोनों में रिपल्सन होगा। तो ये जो फोर्स है, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस एंड ऑल्सो द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो ये जो फोर्स है, इसका लॉ हमारे साइंटिस्ट डी ऑगस्टिन कुलम ने दिया था, इसको हम कुलम्स लॉ भी कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस, हम यहाँ पे पॉइंट चार्जेस बोल रहे हैं, इसका मतलब मैं बाद में समझाऊंगी। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो यहाँ पे पॉइंट चार्जेस का मतलब है, यदि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, कि एक सिंगल पॉइंट पे ही चार्ज है, एक सारा चार्ज उस ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट पे ही समेत है। अगर हम एक्सटेंडेड चार्जेस लेते हैं तो क्या परेशानी होती है, क्या मुश्किलें आती है, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो दो पॉइंट चार्ज, जैसे प्लस क्यू या प्लस क्यू माइनस क्यू या माइनस क्यू ले रहे हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा वो कितना होगा। इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस, दैट मीन्स क्यू इंटू क्यू। अगर दोनों चार्जेस क्यू और क्यू हैं तो इट विल बी प्रोपोर्शनल टू, एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्यू इंटू क्यू, दैट इज क्यू स्क्वेयर, एंड इट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। अगर उन दोनों के बीच में डिस्टेंस आर है तो द एफ इज और द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वन बाय आर स्क्वायर। अगर हम इसमें एक कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऐड कर देते हैं, तो ऐड नहीं मतलब इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, तो एफ इज इक्वल टू के, दैट इज़ द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अगर आपने कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू लिया है तो के कैपिटल क्यू के स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये जो के कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसका वैल्यू होता है 1/4πε₀, और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये वैल्यू आप पुट करके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्सन कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको चार्ज के अमाउंट ऑफ द बोथ द चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज नोन टू यू। तो ये हो गया आपका कूलम्स लॉ। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड इसमें एक मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो आप इसको ऐसे ही कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने कहा कि जब सेम चार्ज लेते हैं तो रिपल्सन होता है। तो सपोज़ एक ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, फिर हम उसमें और पॉजिटिव चार्ज डालना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा, जब हम पॉजिटिव चार्ज लेकर आएंगे एक पॉजिटिवली चार्ज के पास, तो दोनों में रिपल्सन होगा। तो वो रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करके हम उस चार्ज को डालेंगे, तो वो ओवरकम करने के लिए द पर्सन हैज़ टू डू सम वर्क। जो लेकर आ रहे हैं उसको डालना चाहते हैं, देन सम वर्क हैज़ टू बी डन टू पुट मोर पॉजिटिव चार्ज ऑन दैट पॉजिटिव चार्ज बॉडी। तो ये जो वर्क डन होता है, दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आपने वर्क एनर्जी पावर में हम पढ़ते थे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन लिफ्टिंग ए बॉडी फ्रॉम ग्राउंड टू ए हाइट एच, जब हम हाइट एच तक चढ़ा देते थे एक ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करके, सो जितना अमाउंट ऑफ वर्क हम करते थे, दैट अमाउंट ऑफ वर्क इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी इन दैट बॉडी। तो ये जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट करते थे मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी, सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज टू और नियर टू ए अनदर सोर्स चार्ज। एक सोर्स चार्ज के पास और एक चार्ज को हम लेकर आ रहे हैं, देन द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी इन दैट चार्ज। तो ये तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने बोला। एंड व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस से पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। तो हम जब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसमें हमने कहा कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, एक्चुअली फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, किसी पॉइंट पे किसी चार्ज पे कितना अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है कैलकुलेट करने के लिए, हम उस चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जितना काम करना पड़ता है, दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन स्टोर्ड इज पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब पोटेंशियल की बात करते हैं, हमें यूनिट चार्ज को लाना है, तो हम एक यूनिट चार्ज को अगर इन्फिनिटी टू किसी पॉइंट पे ला रहे हैं, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक, तो वो अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि एक में हम कोई भी चार्ज को लेकर आएँ, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज लेकर आ रहे हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने एक सिंगल और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आ रहे हैं, दैट इज़ द डिफरेंस। तो यहाँ पे अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो वर्क डन पहले हमारा अमाउंट ऑफ चार्ज था सोर्स चार्ज, सपोज कैपिटल क्यू, उसके पास हम एक लेकर आ रहे हैं एक अनदर चार्ज दैट इज स्मॉल क्यू, तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी इक्वल टू यू इक्वल टू के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हमने बताया द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो हम कर देंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिनोट करते हैं V से, कैपिटल V, एंड दैट इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय Q। तो W डिवाइडेड बाय Q इक्वल टू के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर डिवाइडेड बाय स्मॉल क्यू दैट इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय आर। तो ये था हमारा एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करने से पहले मैं बता दूं आपको व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक नया टर्म है आपके लिए। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का, तो जैसे एनर्जी का होता है पोटेंशियल एनर्जी का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का भी वही है, दैट इज़ जूल। पर इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डब्ल्यू बाय क्यू दैट इज़ जूल पर कूलम, क्योंकि चार्ज का कूलम होता है, तो हमारा हो गया जूल पर कूलम, और उसको हम कहते हैं वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट है वोल्ट। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे दो पॉइंट के बीच में ही डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे। सपोज पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, और आप एक चार्ज को, क्यू चार्ज को लेकर आ रहे हैं फ्रॉम इन्फिनिटी, और किसी भी पॉइंट से लेकर आ रहे हैं पहले बी तक फिर सी तक। तो क्यू को बी लाने में आपको काम करना पड़ा डब्ल्यू बी, एंड क्यू को सी तक लाने में द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज डब्ल्यू सी। तो द डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ वर्क डन इज डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू सी। नाउ व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हम यहाँ पे क्यू चार्ज ला रहे हैं, तो यूनिट चार्ज लाने में वर्क डन कैलकुलेट करेंगे W बाय क्यू करके। तो द अमाउंट ऑफ और द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज बी बी माइनस वी सी इक्वल टू डब्ल्यू बी बाय क्यू माइनस डब्ल्यू सी बाय क्यू। तो हम लिख सकते हैं वी बी माइनस वी सी इक्वल टू डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू सी डिवाइडेड बाय क्यू। अब बी बी माइनस बी सी को हम डिनोट करते हैं V से, दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस, और डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू सी को हम डिनोट करते हैं W से। तो नॉर्मली हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन हो गया V इक्वल टू W बाई क्यू। तो वही पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर। तो ऐसे ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअल में अगर हम मेजर करना चाहते हैं, आपके घर में भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है, और आपके वहाँ अगर आप मेजर करना चाहते हैं कि आपके घर में कितना वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, तो आप मेजर कर सकते हैं, या किसी भी सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों एंड के बीच में, किसी दो एंड के बीच में, तो आप बस एक वोल्टमीटर लगाना है। द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट मीटर। तो अगर आप वोल्ट मीटर ज्वाइन करेंगे दो एंड के बीच में तो आपको कितना पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों एंड के बीच में समझ में आ जाएगा। तो ये तो था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अभी तक हम बात कर रहे थे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, उसमें हमने पहले नेचर ऑफ चार्जेस, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्कस किया, अगेन नेचर ऑफ चार्जेस, कूलम्स लॉ डिस्कस किया, एंड देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे, जब चार्ज मूव कर रहा है, जो नॉर्मली आप देखते हैं, यूज करते हैं आपके डेली लाइफ में, जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आता है, दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी फॉर चार्ज इज मूविंग। तो जब भी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी कंडक्टर में, हमेशा ये याद रखिए कि कंडक्टर में ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, और किसी भी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है तो एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में कितने चार्ज पर यूनिट टाइम पर सेकेंड फ्लो कर रहे हैं, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम इसको डिनोट कर सकते हैं आई से, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है स्मॉल आई, दैट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, दैट मीन्स क्यू बाय टी। और तो इसका यूनिट भी आप निकाल सकते हैं, क्यू का कूलम है, टी का सेकेंड है, तो कूलम पर सेकेंड, और उसका स्पेसिफिक नेम है, एसआई यूनिट है एम्पियर, जो एक हमारे साइंटिस्ट हैं आंद्रे मैरी एम्पियर, उनके नाम के हिसाब से हुआ है। तो वन एम्पियर इक्वल टू वन कूलम पर वन सेकेंड। तो ये था हमारा एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये एसआई यूनिट है, पर स्मॉलर अमाउंट ऑफ करंट भी होते हैं, स्मॉलर यूनिट्स भी होते हैं, जैसे कि मिली एम्पियर विच इज़ इक्वल टू 10^-3 एम्पियर, एंड माइक्रो एम्पियर विच इज़ इक्वल टू 10^-6 एम्पियर। तो ऐसे ऐसे छोटे यूनिट्स भी आप यूज़ करके करंट मेजर कर सकते हैं। एंड द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर करंट इज एमीटर, और ये हम सीरीज़ में ऐड कर सकते, सीरीज़ में, एक सर्किट में सीरीज़ में ही जॉइन होता है, जबकि वोल्ट मीटर जो हमने बात करा था पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, वो पैरेलल में ही जॉइन होता है। तो ये था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्ट मीटर और एमीटर के बारे में। हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो हमने कहा कि इलेक्ट्रिक करंट इज़ द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो ये जो चार्ज फ्लो हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक ये चार्ज फ्लो होता है, क्यों होता है? एक्चुअली जब आप एक, हमने बात करा था कि ऑल मैटर्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल फ्रॉम आउटसाइड, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो हम जब एक बॉडी को चार्ज कर लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर कोई नेगेटिवली चार्ज है तो उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऐसे ही कोई चार्ज्ड बॉडी के पास, सपोज़ आपने ले लिया पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, तो उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऐसे एक चार्ज बॉडी के पास अगर एक अनचार्ज्ड बॉडी को आप लेकर आ रहे हैं, और उन दोनों को एक मेटेलिक वायर और कंडक्टर से ज्वाइन कर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर चार्ज हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स, तो जो चार्ज्ड बॉडी है उसमें से अनचार्ज्ड बॉडी की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। तो ये जो फ्लो कर रहे हैं उस वजह से हमारा करंट सेटअप होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल में, और नेगेटिव चार्ज फ्लो होता है लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल में। तो अगर जब, कब तक फ्लो होता है, जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। तो अगर दोनों के पोटेंशियल सेम हो गए तो फिर चार्ज फ्लो स्टॉप हो जाएगा, तो फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बंद हो जाएगा। तो अगर हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते रहना है, नॉन स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए, देन यू हैव टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स। आपको हमेशा उन दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखना है, कभी भी उन दोनों के पोटेंशियल को सेम नहीं होने देना है। तो इसीलिए वो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए हमें एक सोर्स डालना पड़ता है, दैट इज़ उसमें एक को पॉजिटिवली चार्ज और एक को नेगेटिवली चार्ज रखना होता है। नॉर्मली आपने देखा होगा सेल आप यूज करते हैं, चाहे आपके रिमोट्स में हुआ या टॉर्च लाइट में हुआ, उसमें हम सेल यूज करते हैं। उसमें एक पॉजिटिव एंड होता है, एक नेगेटिव एंड होता है। तो इसमें क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा जिस डायरेक्शन में, कॉन्वेंशनली हम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को ही इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन मानते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इसमें जो सेल की बात हमने करी, उसमें एक नेगेटिव प्लेट होता है, एक पॉजिटिव प्लेट होता है। तो नेगेटिव प्लेट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी नेगेटिव है और प्लेट भी नेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन रिपेल होके जाएगा कहाँ, इट फ्लोज फ्रॉम द नेगेटिव साइड और नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट थ्रू ए कंडक्टिंग वायर। एक मेटल वायर के थ्रू से वो नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा। तो ये जो चार्ज का फ्लो हो रहा है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन करंट। वो भी करंट है, पर उसको हम इलेक्ट्रॉन करंट कहते हैं। और कॉन्वेंशनली उसके ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लो करता है, उसको उस डायरेक्शन को हम करंट फ्लो की डायरेक्शन मानते हैं। दैट इज़ द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और हम जब बहुत सारे सेल ऐड कर देते हैं, नॉर्मली एक सेल तो हम लगाते नहीं हैं, दो या दो से ज़्यादा हो गए, तो उसको हम कहते हैं बैटरी। और जो बैटरी है, इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट, दैट इज़ डीसी। व्हाट इज़ डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट मतलब है अगर वो सेम डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहा है देन, और सेम डायरेक्शन में फ्लो होता है, देन इट इज़ नोन एज डायरेक्ट करंट। इट डज नॉट चेंज द डायरेक्शन। एक्चुअली ये डायरेक्शन क्या है, वो आपको जब आप वेव्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक वेव्स, तब आपको समझ में आ जाएगा। जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ हम इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसके बाद है, इस चैप्टर के बाद, तो वहाँ पे आपको डीसी और एसी में फ़र्क पता चल जाएगा। बट अभी आपको इतना जानना है कि जो बैटरी या सेल है, इट इज़ ए सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। और इसको भी आप किसी सर्किट में आपने लगा लिया, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने, अगर एमीटर एक जॉइन कर लिया आपने सर्किट में, तो आपको पता चल जाएगा कितने अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। नाउ लेट अस डिस्कस कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। व्हाट आर कंडक्टर्स एंड व्हाट आर इंसुलेटर्स, ये तो बहुत ही कॉमन टर्म है, शायद आप लोगों को पता भी हो, फिर भी हम बता देते हैं कि कंडक्टर्स मतलब जिसके थ्रू से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है, दैट आर नोन एज कंडक्टर्स। जैसे कि आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है, इलेक्ट्रिक वायर होता है, आपको तो बाहर से उसका कवर ही दिखता है, या तो ब्लैक कलर का या रेड कलर का, ग्रीन कलर का, येलो कलर का, वो प्लास्टिक कवरिंग है, वो इंसुलेटर कवरिंग है। पर उसको अगर आप किसी दिन काट कर वो इंसुलेशन को हटा देंगे, तो आप उसके अंदर देख पाएंगे वो कंडक्टिंग वायर्स होता है, बहुत पतले पतले बंच ऑफ वायर्स होते हैं, नॉर्मली एल्यूमिनियम या कॉपर वायर्स होते हैं उसमें, तो वो हैं वो कंडक्टर्स। और जो बाहर इंसुलेशन दिया हुआ है, वो है इंसुलेटर्स, ताकि कोई छू भी ले तो कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक करंट होता है, उसको आप छूने से आपको हानि पहुँच सकती है, तो इसलिए ऊपर एक लेयर ऑफ कवरिंग दिया हुआ होता है। तो कंडक्टर्स हो गया जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है जिनके थ्रू, और व्हाट आर इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स आर द मटेरियल व्हिच कैन नॉट कंडक्ट और व्हिच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम फ्रीली। जैसे कि आपका हो गया, अभी हम बात कर रहे थे प्लास्टिक, रबर या फिर ग्लास, बैकलाइट एट्सेट्रा, बहुत सारे इंसुलेटर्स, आपके वुड भी नॉर्मली इंसुलेटर्स ही होता है, ड्राई वुड। उसके बाद आता है हमारा रेजिस्टर्स। व्हाट आर रेजिस्टर्स, रेजिस्ट, जब ये वर्ड आप सुनते हैं, रेजिस्ट का मतलब है किसी चीज़ को हम मना कर रहे हैं, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ होता है, जब इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ ए मटेरियल, ऑफ ए सब्सटेंस टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है उसको वो मटेरियल रेजिस्ट करता है, वो फ्लो को नहीं होने देना चाहता है, तो वो जो प्रॉपर्टी होता है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं. तो कुछ सब्सटेंस के रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, कुछ सब्सटेंस के बहुत कम होता है. तो नॉर्मली जो आपका कंडक्टर होता है उसमें भी रेजिस्टेंस होता है. तो आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये, या फिर आप देख भी सकते हैं, आजकल तो इंटरनेट से बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है, या फिर किसी हायर क्लासेस के बुक ले लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से मटेरियल की रेजिस्टेंस कितना है. तो आपको पता चल जाएगा जिसका रेजिस्टेंस जितना कम है वो उतना ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है, क्योंकि वो रेजिस्ट नहीं करता है, कम रेजिस्टेंस है. या फिर अगर ज़्यादा है, जैसे कि इंसुलेटर्स की केस में बहुत ज़्यादा होता है रेजिस्टेंस, दैट मीन्स दे कैन नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी और दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी उनके थ्रू में फ्लो ही नहीं कर सकता क्योंकि वो इतने लेवल तक रेजिस्ट करते हैं. तो ऐसे होता है. तो अगर एक सुइटेबल रेजिस्टर्स क्या है, ये तो रेजिस्टेंस की बात हम कर रहे थे. तो एक सुइटेबल रेजिस्टेंस एक सर्किट के लिए, एक सुइटेबल रेजिस्टेंस और डिजायर रेजिस्टेंस जब हम एक डिवाइस के थ्रू सेटअप करते हैं, उस डिवाइस को कहा जाता है रेजिस्टर. एक आपका वायर भी एक रेजिस्टर बन सकता है, एक सिंपल कंडक्टिंग वायर को भी हम रेजिस्टर बोलते हैं. बट उसमें क्या है कि हम एक सुइटेबल रेजिस्टेंस उसको देते हैं. जैसे कि हमारे रेजिस्टेंस का यूनिट होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का ओम, तो हम कहते हैं 2 ओम. तो उस जो वायर आपको मिला है उसका रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी है 2 ओम, या फिर 1 ओम, 3 ओम, 5 ओम, 10 ओम. तो उस रेजिस्टर्स को ऐसे डिवाइस किया गया है कि वो 5 ओम रेजिस्टेंस देगा. तो ये होते हैं हमारे रेजिस्टर्स. तो रेजिस्टेंस का दोनों क्वालिटी है, कुछ जगह पे वो डिज़ायरेबल होते हैं, कुछ जगह पे अनडिज़ायरेबल होते हैं. जैसे कि हमारे सर्किट्स होते हैं वहाँ पे अनडिज़ायरेबल है, क्योंकि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसमें हीट प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी खपत हो जाती है. तो जहाँ हमारे सप्लाई वायर्स हैं वहाँ पे रेजिस्टेंस अनडिज़ायरेबल है. पर डिज़ायरेबल कहाँ हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जहाँ पे हीटिंग इफ़ेक्ट हमें चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, इमर्सन रॉड हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, बल्ब हो गया, आपका जो पहले आपके येलो लाइट वाले बल्ब आते हैं जिसमें फिलामेंट है, तो इन सब में वो डिज़ायरेबल है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उसमें उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा या लाइट प्रोड्यूस होगा. तो इन जगह पे रेजिस्टेंस डिज़ायरेबल. तो हमने बात कर ली कंडक्टर, इंसुलेटर्स और रेजिस्टर्स की. अब हम बात करते हैं ओम्स लॉ की. साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने ये लॉ दिया था, इसको हम कहते हैं ओम्स लॉ. एंड इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस. तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर और कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स. तो एक आप कंडक्टर ले रहे हैं, उसके दोनों एंड के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है और उसमें कितना करंट फ्लो करेगा वो डिटरमिन करता है ओम्स लॉ. तो द करंट फ्लोइंग थ्रू द उस कंडक्टर में जितना करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स. इसमें एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेंस कॉन्स्टेंट. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसमें करंट जितना फ्लो कर रहा है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस. दैट मीन्स अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड के बीच में बढ़ा देंगे तो करंट भी ज़्यादा फ्लो होगा. अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम कर देते हैं तो करंट कम फ्लो होगा. एंड दिस लॉ इज़ एप्लीकेबल टू कंडक्टर्स ओनली, प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेंस कॉन्स्टेंट. टेम्परेचर भी एक फैक्टर है, अदरवाइज ओम्स लॉ ओबे नहीं होगा. तो यहाँ पे हम मैथमेटिकली अगर इसको एक्सप्रेस करें तो वी और वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, वी इक्वल टू आर इंटू आई, R is the proportionality constant, which is also known as resistance of the conductor. So V equal to IR or RI, और R को हम कहते हैं रेजिस्टेंस और उसका यूनिट है ओम. रेजिस्टेंस को हम मेजर करते हैं ओम से. तो यहाँ पे जो V इक्वल टू आई आर हमने लिया तो R इक्वल टू V बाय आई, दैट मीन्स 1 ओम और रेजिस्टेंस का यूनिट है 1 ओम. तो 1 ओम इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर. तो ये तो SI यूनिट हो गया. इसके बड़े बड़े यूनिट दैट मीन्स हायर यूनिट भी है, बिगर यूनिट्स, दैट इज किलो ओम मेगा ओम. तो 1 किलो ओम इक्वल टू, जैसे आप जानते हैं किलो इक्वल टू 10^3, तो 1 किलो ओम इक्वल टू 10^3 ओम एंड 1 मेगा ओम इक्वल टू 10^6 ओम. तो ये जो रेजिस्टेंस है ये डिपेंड करता है हमारे वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के ऊपर. और यहाँ पे अगर आप एक ड्रॉ करते हैं ग्राफ ओम्स लॉ के लिए, देन दैट ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द एक्स एक्सिस और करंट एक्सिस. आपने करंट लिया है एक्स एक्सिस में, वोल्टेज लिया है वाई एक्सिस में, तो आपका जो ग्राफ मिलेगा आपको दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इंक्लाइन टू द करंट एक्सिस और एक्स एक्सिस. और रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपन द लेंथ, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. इसका मतलब है अगर लेंथ ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, अगर इसका थिकनेस ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा. रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स थिकनेस इनटू विड्थ. तो थिकनेस ज़्यादा होगा तो भी रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और विड्थ कम ज़्यादा होगा तो भी रेजिस्टेंस कम हो जाएगा. और एक चीज़ के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, वो है उसका नेचर ऑफ सब्सटेंस. जैसे कि अभी हमने कहा कि अगर वो कॉपर है या एल्युमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, क्या है, या फिर इंसुलेटर. इंसुलेटर के केस में तो वो बहुत ही ज़्यादा होता है रेजिस्टेंस. तो ये डिपेंड करता है कि सब्सटेंस क्या है, नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है. तो नेचर ऑफ मटेरियल कह सकते हैं हम इसको. और एक वायर का रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता. और रेजिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका यूनिट हमने सुन लिया, सिंबल इज ओम एंड द हायर यूनिट्स आल्सो किलो ओम मेगा ओम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया. अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. एक रेजिस्टर तो हमने कह दिया कि 2 ओम 3 ओम 5 ओम होता है. तो अगर आप को एक डिजायर्ड रेजिस्टेंस चाहिए तो आप छोटे छोटे रेजिस्टेंस को लेकर सुइटेबली अगर आप उसको कंबाइन करते हैं तो आपको आपका डिजायर्ड रेजिस्टेंस मिल सकता है. तो 2 टाइप के कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं, एक सीरीज होता है, एक पैरेलल होता है. सीरीज रेजिस्टेंस में क्या होता है, जो रेजिस्टर्स हैं वो एंड टू एंड जॉइन होते हैं. जैसे आप स्कूल में एक लाइन बना रहे हैं, आपके लेफ्ट हैंड को आपके फ्रेंड ने पकड़ा है, मतलब जो फर्स्ट खड़ा है उसके राइट हैंड को सेकंड बॉय का लेफ्ट हैंड पकड़ा है, सेकंड बॉय की राइट हैंड को थर्ड बॉय ने लेफ्ट हैंड से पकड़ा है, थर्ड बॉय की लेफ्ट राइट हैंड को फोर्थ बॉय ने लेफ्ट हैंड से पकड़ा है. ऐसे जो आप लाइन बनाते हैं ऐसे ही होता है सीरीज कॉम्बिनेशन. तो इसमें क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में याद रखना है कि करंट सेम रहता है. सारे रेजिस्टर्स में आपका करंट सेम रहेगा, बस आपका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा. अगर आपके जो रेजिस्टर्स हैं वो अलग अलग हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाता है. तो सपोज आपने R1, R2, R3 लिया है तो करंट विल बी सेम, आई अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू द 3 रेजिस्टर्स R1, R2 एंड R3, बट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 विल बी different than R2 and R3. Suppose potential difference across R1 is V1, across R2 is V2, and across R3 is V3. Then you can write that V1 equal to IR1, V2 equal to IR2, and V3 equal to IR3. And V equal to V1 plus V2 plus V3. द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस वी। तो अब आप V1, V2, V3 का वैल्यू पुट कर सकते हैं। V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3, I सब में कॉमन आ गया, I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, एस V इक्वल टू I इंटू R, R इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो आपका डिजायर्ड रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं। तो I इंटू R इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R इक्वल टू हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज द लॉ फॉर और इक्वेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जितने भी आप रेजिस्टेंस सीरीज में कंबाइन कर रहे हैं, द टोटल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू द एडिशन ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस। आप सिंपली ऐड कर दीजिए, सपोज 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, तीन रेजिस्टेंस आपने लिया, सीरीज में कंबाइन कर दिया, तो टोटल रेजिस्टेंस विल बी 2 + 3 + 5, दैट इज इक्वल टू 10 ओम। तो ये था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर आप पैरेलल में कंबाइन कर रहे हैं, पैरेलल में कंबाइन कर रहे हैं, तो वही फिर वही लाइन वाली बात हम करेंगे। इसमें क्या होगा, वैसे नहीं, सारे जितने भी आप हैं सबके लेफ्ट हैंड एक तरफ आपने सबने पकड़ रखा है, और सबके राइट हैंड एक साथ हमने मिला दिया, तो जो कॉम्बिनेशन होगा वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसमें क्या होता है, पहले सीरीज में करंट सेम रह रहा था एंड पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट, बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम बिकॉज ऑल द रेजिस्टर्स आर कंबाइंड टू द टू एंड्स, सबका एंड सेम दोनों पॉइंट पे ही है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स, बट द करंट विल बी डिफरेंट, इट विल गेट डिवाइडेड। तो इसमें I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 इज द करंट अक्रॉस R1, I2 इज अक्रॉस R2 एंड I3 इज अक्रॉस R3। तो अब क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू V/R1, I2 इक्वल टू V/R2 एंड I3 इक्वल टू V/R3, टोटल करंट I इक्वल टू V/R, दैट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो हमें मिलता है 1/R, दैट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसमें रेजिस्टेंस जो आपके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उससे कम डिजायर्ड रेजिस्टेंस अगर आपको चाहिए तो आप पैरेलल करेंगे, और अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो सीरीज कर सकते हैं। तो ये था हमारा पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशंस। इसके ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड आपको क्वेश्चंस आते हैं, एक सर्किट दिया हुआ होगा एंड यू हैव टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आपको उसमें डिसाइड करना है कि कौन कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में है, कौन कौन से पैरेलल में है, और अकॉर्डिंगली आपको कैलकुलेट करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। हमने अभी बात की थी कि कुछ जगह पे रेजिस्टेंस डिज़ायरेबल हैं, कुछ जगह पे ऑन डिज़ायरेबल हैं। ऑन डिज़ायरेबल तो वहाँ हैं जहाँ पे आप सप्लाई दे रहे हैं, तो वहाँ पे ऑन डिज़ायरेबल है क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिक एनर्जी वेस्ट हो जाते हैं। बट जहाँ पे डिज़ायरेबल हैं वहाँ है हीटिंग इफ़ेक्ट जहाँ पे काम करता है। तो हीटिंग इफ़ेक्ट की बात जब कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रिक हीटर पे यूज हो रहा है, बल्ब पे यूज होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो बल्ब में फिलामेंट होता है वो उसके थ्रू जब इलेक्ट्रिक करंट जाता है और वो कंडक्टर हीट होके जलने लगता है, ब्राइट हो जाता है, तब आपको लाइट मिलती है। या फिर इलेक्ट्रिक हीटर की बात कर लीजिए, क्योंकि आपको उसमें हीट चाहिए, तो उसमें जो फिलामेंट होता है दैट इज़ ए कंडक्टर, तो वो जब हीट हो जाता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो ज़्यादा हीट होता है, तो हीट होता है फिर आपको हीट मिलता है जिससे आप कुक करते हो। तो यहाँ पे ये हीटिंग इफ़ेक्ट कैसे होता है, हीटिंग इफ़ेक्ट भी वही हीट इज एनर्जी इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इन दिस केस आल्सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज अपीयर एज हीट एनर्जी। तो यहाँ पे कौन से वर्क डन की हम बात कर रहे हैं, अगर आप चार्ज को एक कंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहे हैं और उसका रेजिस्टेंस आर है, तो हम वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज क्यू करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो क्यू इक्वल टू आप जानते हैं आई इंटू टी, दैट इज करेंट इंटू टाइम, वी इंटू आई इंटू टी, वी इक्वल टू जानते हैं आई इंटू आर, तो आई इंटू आर इंटू आई इंटू टी, तो आई स्क्वायर आर टी, तो डब्ल्यू इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हो गया. एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन विल अपीयर एज हीट. चार्ज को फ्लो कराने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है, दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन अपीयर्स एज हीट. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हो गया, तो इट डिपेंड्स अपन द रेजिस्टेंस आर. तो आर जितना ज़्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा. और यहाँ पे ये हीट का हम यूनिट लेते हैं जूल, और एक यूनिट भी होता है कैलोरी. तो कैलोरी और जूल के बीच में रिलेशन ये है कि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल. तो ये जो हीट प्रोड्यूस होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर करंट स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर व्हिच करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर. इन सब के ऊपर डिपेंड करता है. ये तो हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी और हीट एनर्जी के बारे में बात की, और एक होता है इलेक्ट्रिक पावर. आपने जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आते हैं आपके पास, आप देखते हैं कितने पावर रेटिंग क्या है. तो इलेक्ट्रिक पावर की जब हम बात करते हैं नॉर्मली, जैसे पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम कर देते हैं तो पावर मिलता है, वैसे ही यहाँ पे भी वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे. वर्क डन इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाय टी, दैट इज इक्वल टू वी आई. पावर का एक्सप्रेशन हो गया वी आई. तो यहाँ पे यूनिट भी वही वाट ही होता है, इसके अलग एक्सप्रेशन हो गया है पी इक्वल टू ऑल्सो आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाय आर. तो वाट इसका यूनिट है, 1 वाट इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर वी आई. तो इसके हायर यूनिट्स भी हैं, 1 किलोवाट इक्वल टू 10^3 वाट, 1 मेगावाट इक्वल टू 10^6 वाट. एक बहुत ही जो यूज होता है वो है हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट. जो आपके घर में इलेक्ट्रिक बिल आता है वो भी आप कहते हैं इतना यूनिट्स है उतना यूनिट्स है. तो ये जो यूनिट होता है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर है, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर. तो ये 1 किलोवाट आवर को अगर आप जूल में कन्वर्ट करते हैं तो आपको मिल जाता है 3.6 × 10^6 जूल. तो 1 यूनिट इक्वल टू इतना जूल है, 3.6 × 10^6 जूल. और आपके घर में जो बिजली का बिल आता है वो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, आपके पावर रेटिंग और आप कितना घंटा यूज़ कर रहे हैं वो आपको पता चल जाए तो आप अपना खुद ही कैलकुलेट भी कर सकते हैं. तो ये जो 1 किलोवाट आवर, इसको बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट और BOT कहा जाता है. तो ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो आपके घर में यूज होते हैं, जो थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे होते हैं, आप बता सकते हैं. इलेक्ट्रिक आयरन है, इमर्शन हीटर है, गीजर है, कुकिंग रेंज जो भी आते हैं, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, ये सारे ही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर काम करते हैं. और भी बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है, ये भी इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट के ऊपर ही स्टैंडर्डाइज किया जाता है. तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट के बारे में और उनके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बारे में. तो आज हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में, उसमें हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में, फिर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, एंड इलेक्ट्रिक करंट में हमने देखा ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस किया, एंड रेजिस्टर्स, कंडक्टर्स, इंसुलेटर क्या होते हैं वो भी डिस्कस करा, एंड व्हाट इज़ द रूल फॉर कैलकुलेटिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. अगर हमें डिजायरेबल रेजिस्टेंस चाहिए तो हम डिफरेंट रेजिस्टर्स को लेके कैसे डिजायरेबल रेजिस्टेंस पा सकते हैं उसके बारे में भी हमने डिस्कस की. फिर हमने हीटिंग इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया, जहाँ हमने कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हीटिंग, कितना हीट प्रोड्यूस होगा एक पर्टिकुलर कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करता है तो, और कौन कौन से अप्लायंसेस में इलेक्ट्रिकल और थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट काम करता है उसके बारे में भी हमने डिस्कस की. तो आशा है कि आप सबको समझ में आया होगा. अगर नहीं आया है तो आप सवाल पूछ सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं. Thank you for listening to the program.